ओम शांति। आज का टॉपिक है डिटैचमेंट फ्रॉम पास्ट, अतीत से न्यारापन। तो सबसे पहले कहानी से शुरुआत करते हैं। एक किसान था और उसकी एक पत्नी और एक बेटा थे। तो कुछ समय के बाद उसकी पत्नी शरीर छोड़ देती है, तब तक ये बच्चा 10 साल का हो जाता है। फिर वो दूसरी शादी करता है और दूसरी पत्नी से भी उसको एक बेटा हो जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद वो भी पत्नी मर जाती है। तो ये जो पहली पत्नी का बेटा होता है वो तब तक बड़ा हो जाता है और भी कुछ समय के बाद किसान खुद भी मर जाता है। तो ये जो छोटा भाई होता है उसका, दूसरी पत्नी का जो बेटा, तो वो उसको संभालने की जिम्मेदारी पहले पत्नी के बेटे पर आती है और वो उसे बहुत अच्छे से संभालता है। परंतु एक बार क्या होता है, उसकी शादी हो जाती है वो पहले वाले बेटे की, और ये छोटा जो भाई होता है वो बीमार पड़ जाता है। बीमार पड़ जाता है तो इतना बीमार पड़ता है कि उसका बहुत पैसा खर्चा होता है, लेकिन ये ठीक नहीं होता है। तो एक दिन वो ऐसे ही मतलब परेशान हो जाता है इसकी बीमारी से कि ये तो ठीक होता ही नहीं है। तो अपनी पत्नी से सलाह करता है कि क्या करे, इसका इसको मार डाले। तो पत्नी बोलती है, हाँ अच्छा है, मार डाले तो मर जाएगा, तो अपना सब समय पैसा सब कुछ बच जाएगा, मेहनत सब बच जाएगा। तो लेकिन सोचते कैसे मारे। फिर वो पत्नी उसकी बोलती है कि आप वैद्य जी जो है उसको बोलो कि आप इसको ऐसे कोई जहर, कोई जैसे वैद्य लोग जो दवाई देते हैं वो कुछ पुड़ियों में पाउडर डाल के देते हैं, तो आप ऐसे करो, उनको बोलो इसमें जहर डाल के दे दो। तो वैद्य से भी सलाह करते, वैद्य को बोलते कितना पैसा चाहिए, हमको इसको मार डालना है। तो वैद्य भी वो दवाई वैसे दे देता है, जहर दे देता है, और ये जैसे रोज दवाई खाता वो भी खा लेता है, और फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर कुछ समय के बाद इन दोनों को बेटा हो जाता है एक। तो फिर जब बेटा हो जाता है ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत उसका धूमधाम से उसका जन्मदिन मनाते सब कुछ करते हैं। तो ये जब बेटा जब बड़ा हो जाता है वो फिर बीमार पड़ जाता है। जब बीमार पड़ जाता है तो इन लोगों को फिर वही रिपीट हो जाता है सारा। तो लेकिन इनका बेटा होता है वो, तो इनको बहुत ज़्यादा दुख होता है और ये लोग बहुत पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन उसकी कोई उम्मीद नहीं रहती ठीक होने की। और ये जो बेटा है जिसकी मतलब जो बीमार पड़ता है उसकी भी शादी हो चुकी होती है, तो ये पत्नी भी दुखी हो जाती है, क्या करे अभी ये मर जाएगा। तो एक दिन एकदम अस्थि पंचर जब हो जाता है ये जो बेटा है, फिर वो बोलता है, बेटा तू कब, तेरे लिए हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, ये जो उसका पिताजी जो है वो बोलता है इतना सब कुछ कर रहे, तुम ठीक नहीं हो रहे, हमें बहुत दुख हो रहा है। तो वो जो बेटा होता है अस्थि पंचर हो चुका है तो बोलता, भाई अभी सिर्फ कफन का और जो शमशान का है उतना खर्चा बचा है, बाकी सब हिसाब किताब चुक्त हो चुका है। तो उसको लगता है कि ये बीमारी के कारण थोड़ा मतलब उसका माइंड ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो बोलता, बेटा मैं तुम्हारा भाई नहीं, मैं तुम्हारा पिताजी हूँ, तुम भूल गए क्या मुझे। तो बोलता, नहीं मैं भूला नहीं हूँ, तुम वही मेरे भाई हो। तो बोलता कैसे, तो फिर वो स्टोरी बताता है कि आपने कैसे मुझे जहर देके मरवाया था। जैसे जब भी किसी का मर्डर होता है या कुछ भी होता है, भले कोई दुनिया में प्रूफ नहीं मिलते हैं, लेकिन वो आत्मा जानती है, मारते समय नहीं जानते कौन मारा, लेकिन बाद में वो देख लेती है सूक्ष्म शरीर से कि किसने क्या किया मेरे लिए। तो ऐसे इसको भी पता चल जाता है। तो बोलते है कि मेरा जितना हिस्सा था संपत्ति में उतना पैसा मैंने आपका खर्चा करवा दिया है, अब मेरा आपका हिसाब किताब पूरा हो गया है। फिर वो पूछता है कि वो फिर ये जो मरने वाला होता है वो पूछता है कि वैद्य कहाँ है। तो ये बोलता है, अरे वो तो 3 साल के बाद मर गया, तुम जब मरे उसके बाद 3 साल के बाद मर गया। तो वो बोलता है, आपको पता है वो कहाँ है, वो वैद्य जो है वो अभी मेरी पत्नी बन के आया है। और यहाँ मतलब वो स्टोरी में ऐसे बताया कि जैसे वो सती प्रथा होती थी ना पहले, तो वो सती प्रथा के अनुसार फिर पत्नी को तो मतलब अग्नि में समर्पण होना पड़ता है। तो वो कहते हैं कि अभी जो उसने मुझे मारा ना, तो इसको अभी जिंदा जलना पड़ेगा मेरे लिए, क्योंकि मैं पूरा हिसाब किताब चुकतू करने जा रहा हूँ। तो इसी प्रकार ये फिर मर जाता है और उसकी पत्नी को भी सती होना पड़ता है। तो ये कर्म की फिलॉसफी है। कर्म की फिलॉसफी अर्थात ये अतीत में हमने जो कुछ किया है वो हमारे सामने सामने कब आएगा, कैसे आएगा वो हम नहीं जानते, लेकिन आता जरूर है। तो इस जीवन का जो अतीत है वो भी बहुत अलग टाइप का होता है। ये जो पास्ट बर्थ का हो गया है, लेकिन इस जीवन का, तो अतीत माने क्या, जो बीत गया, जो भी कभी वापस नहीं आने वाला है, तो भूतकाल जिसे कहते हैं। तो हर क्षण हर पल जो भी बीतता जाता है वो अतीत बन जाता है। हम चाहे अतीत में कभी कभी खुशी के पल आते हैं, कोई दुख के पल आते हैं, लेकिन हमें जो हमारी खुशियां हैं, प्राप्तियां हैं, अचीवमेंट्स हैं, वो थोड़ी कम याद आती हैं आगे जाके, लेकिन दुख जो है वो बहुत ज़्यादा याद आता है, वो अपनी ओर ज़्यादा खींचता है। तो अतीत को क्यों डिटैच होना है, क्यों नहीं याद करना है, क्योंकि अतीत माना ही बीत गया, वो दोबारा जब आएगा ही नहीं, तो उसके बारे में चिंतन करके, उसके बारे में सोच के हम अपना वर्तमान का समय खराब करते हैं। इस समय की एनर्जी, समय का जो हमारा वैल्यूएबल टाइम है, चाहे वो ज्ञान में है या नहीं है, कहीं पे है, लेकिन अगर कोई भी मनुष्य आत्मा अगर अपने अतीत को याद करती है तो वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसमें समय बहुत बर्बाद होता है। हालांकि एक बात का अतीत हम अच्छे से याद कर सकते हैं, वो जैसे बाबा कहता है ना कि कल तुम स्वर्ग में महाराजा महारानी थे और कल फिर बनेंगे, है ना। तो आज कल, आज और कल, ये तीनों का है। तो ये अतीत हम इसलिए याद कर सकते हैं क्योंकि इससे हमारी जो है वो हमारे संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें बहुत अच्छा, अपने बचपन में बहुत कुछ अच्छा मिला, या हमारी कोई एक उम्र में हमें बहुत सारे अचीवमेंट्स मिल गई हैं, और वर्तमान समय में अगर हमारे पास विपरीत परिस्थिति आ गई है, तो हम उन सुखों को, उन खुशी को, उस प्राप्तियों को अभी के समय में कंपेयर करते हैं तो हमें फिर और दुखी होता है, उसमें हमें कोई अच्छी प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए उस समय जो था वो उस समय हमें मिल गया। इसे कल ही हमने कुछ पढ़ा था, उसमें लिखा था कि धनवान जो होते हैं ना, उनको आने वाले समय का डर होता है कि क्या होगा हमारे, लेकिन जो गरीब होता है ना, उसको कभी वो डर नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो इस परिस्थिति से गुजर रहा है, तो इससे वर्स्ट और क्या होगा, उसको तो ये आशा उल्टी होती है और भी कि हमारे पास कभी ना कभी अच्छा समय आएगा। लेकिन धनवान को कभी ये नहीं होता, वो हमेशा डरता ही रहेगा कि कैसे होगा, कल कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे। तो इस प्रकार से हम अच्छा अतीत है तो भी उसको वर्तमान समय से कंपेयर नहीं करना चाहिए, जो है उसमें संतुष्ट होकर चलना चाहिए। जैसे वो अकबर एक बार बिरबल को पूछता है कि तुम क्या कोई ऐसा सेंटेंस लिखो जो जो खुश है वो उसको भी दुख हो, जो दुखी है वो उसको खुशी हो। तो वो लिखता है ये वक्त जा रहा है, ये भी पास्ट हो रहा है, तो जो अच्छा है उनको डर लगता है, जो बुरा है उनको खुशी होती है, उनको उमंग उत्साह आता है कि चलो कहीं कभी ना कभी अच्छा आएगा हमारा समय। इसलिए अतीत की बातों पे कोई चर्चा नहीं करनी, या चर्चा करते भी है तो भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसका मन में घर करके नहीं रखना है, जो है वो है। लेकिन कई बार अतीत ऐसा है, अधिकतर जो हमारे फेल्यूर्स हैं, हमारे साथ ट्रॉमा होते हैं कुछ, या कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं होती है, वो हमें जिंदगी भर दुख देती रहती है। जब भी उसके रिलेटेड कोई चीज़ें ऐसी आती हैं तो हम उसका बहुत वर्णन करते हैं, हमें वो चीज़ें बहुत दुख देती है कि देखो हमारे साथ एक बार ऐसा हुआ था। हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है, किसी का कम, किसी का जास्ती, किसी का बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक लाइफ हो जाता है, कुछ अच्छा मिलता ही नहीं। हम सुनते हैं ना कई लोगों को कि क्या है, बोलते हैं हमारे लाइफ में हमेशा एडवर्सिटीज ही है, हमेशा दुखी है, तो ये सब ऐसा होता रहता है। तो ये इसमें भी किसी को फिजिकली बहुत टॉर्चर किया जाता है पहले के टाइम में, तो वो उसको याद रहता है। किसी को मेंटली बहुत टॉर्चर होता है, और जो मेंटल टॉर्चर होता है वो सभी प्रकार के टॉर्चर से ज़्यादा हाई लेवल का होता है, क्योंकि अंदर तक चला जाता है वो। जैसे बड़े घरों में हम लोग मतलब जो ज्यादा स्टैंडर्ड समझते हैं अपने, उनके वहां पे देखो तो उनके घर में वैसे देखो तो सब अच्छा दिखेगा, लेकिन अंदर इतना ज्यादा टॉर्चर होता है कि वो कहीं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते। तो उन लोगों का जो दुख का लेवल है वो ज्यादा होता है। फिजिकल टॉर्चर है ठीक है, तुमको मारा पीटा, थोड़े टाइम में वो जख्म ठीक हो जाएंगे, फिर नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन मेंटल टॉर्चर ऐसा है जो मन को घात होता है, तो वो उससे हम उबर नहीं पाते हैं। और किसी किसी को सोशल टॉर्चर भी होता है, आजू बाजू के लोग हो सकता है उसना किसी न किसी प्रकार से उनको तकलीफ देते हैं, कभी किसी को बहिष्कृत करते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इन अलग अलग प्रकार के हर एक के टॉर्चर होते हैं, और वो सब जैसे अभी बताया क्लास में कि हर एक की स्पेशलिटीज अलग होती है, इंटेलिजेंस अलग होता है, ऐसे दुख भी हर एक के अलग अलग होते हैं। किसी का किसी से मिलता जुलता नहीं है, उसके लेवल भी अलग अलग होते हैं, और सामने वाले की कैपेसिटी जो होती है वो भी अलग अलग होती है। तो ये जो अतीत है हमारा, हमें हर पल दुख देता रहता है, क्योंकि हमारे पास्ट कर्मों के भी जो पास्ट कर्म होते हैं वही अभी हमारे सामने आते हैं। तो कल हमने एक बहुत अच्छी बात पढ़ी थी, जैसे बाबा ने तो उसके बारे में ज्ञान दिया है लेकिन थोड़ी विस्मृत हो जाती है कई बार। तो बाबा ने जैसे कहा कि पास्ट के जो तुम्हारे किसी के साथ भी जो कोई अकाउंट्स है, अच्छे बुरे जो भी है, वो तुम्हारे सामने अभी आते हैं किसी न किसी के रूप में। और जितना हम जिसके जितने ज्यादा जो अकाउंट हमारे ज्यादा है, कड़े हैं, उनके ही हम नजदीक आते हैं। नहीं तो हम दुनिया में हम बहुत सारे लोग होते हैं उनके हम नजदीक नहीं आते, क्योंकि जहां कड़े अकाउंट है क्योंकि उसको चुक्त करना है। और हमें तो ये भी ज्ञान है कि हमारा अभी संगम का लास्ट बर्थ है, तो यही हमें चुक्त करना है। लेकिन ये जो अकाउंट है हमें उनसे बहुत ज्यादा दुख मिलता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, सब कुछ होता है। तो ये जो हमें दुख मिलता है इनसे हमें ये कार्मिक अकाउंट समझ के इसको यही चुक्त करना है। अगर हम उनके बार बार उसका रिपीटेशन करते हैं, दुखी होते हैं या प्रतिकार करते हैं उसका, तो ये हमारे फिर से न्यू बॉन्डेजेस क्रिएट होते हैं। तो आए हैं हम कार्मिक अकाउंट चुक्त करने के लिए, लेकिन और नए नए बनाते रहते हैं। जैसे नहीं कोई किसी का हमारे साथ माना पॉजिटिव अकाउंट है, ठीक है पॉजिटिव अकाउंट है, वो हमको हेल्प कर रहे हैं, सब अच्छा है, अच्छी बातचीत चल रही है। लेकिन अगर हम उस समय हमें कुछ और विकारों के संकल्प आते या हमें कोई आकर्षण हो जाता है किसी का और हम उससे कांटेक्ट बढ़ाना चाहते हैं, तो जहां ये जो हमारे कार्मिक अकाउंट चुक्त होने हैं वो और भी डबल हो जाते हैं। कोई दुख देता है हमें, किसी ने हमें 2 मारा, हम उसको रिटर्न में 4 मारते हैं, फिर वो और भी इंक्रीज होता जाता है। तो यहाँ हमारे कट नहीं होते, बढ़ते जाते हैं। इसलिए ये सब अतीत की बातें जो है वो हमें यहीं स्टॉप करनी है। तो इन बातों से हम डिटैचमेंट कैसे लाएं, तो इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहली बात है कि एनालाइज अवर पास्ट। जो बातें हमें वो दुख दे रही है या जिससे हमें परेशानी हो रही है, उसको हमें मतलब जिन बातों को याद करके हमें दुख हो रहा है, तो उन बातों को हमें पहले एनालाइज करना है, इसका विश्लेषण करना है कि ये क्या हुआ है, क्यों हुआ ऐसा, किस परिस्थिति में इस तरह से ऐसा हुआ और हमारा ये रिएक्शन हुआ, और हमें उस समय पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए, उस प्रकार का एनालाइज करने का, विश्लेषण करने का, और उससे कुछ सीख के आगे बढ़ने का। मान लो अगर वैसे ही परिस्थिति अगर हमारे पास फिर से आती है तो हम उसमें कैसे उसमें सक्सेस हो। जैसे अभी सर ने बताया था कि जैसे एक जो अनुभव कुमार अधर कुमार को है वो कुमार को नहीं है, उतनी अथॉरिटी से वो कुमार नहीं कह सकेगा जितना वो अधर कुमार कह सकता है। तो हर एक की अपनी अपनी अलग अलग अथॉरिटी होती है। तो ऐसे ही अगर मान लो हम उस परिस्थिति से गुजरे हैं जिसका हमें आज तकलीफ हो रही है, नहीं वो आपको बताना चाहिए था। हर एक की अपनी अपनी अलग अलग अथॉरिटी है ना, इसलिए कहा कि तो वो जैसे इनको मेडिकल का नॉलेज है, ठीक है ना, तो मेडिकल का नॉलेज हर भले 10 डॉक्टर है लेकिन हर एक की अपना अनुभव है, हर एक का एक्सपीरियंस है, तो वो अपने अपने अथॉरिटी से बताएगा कि कैसे कैसे मतलब उस विषय पे बता सकते हैं। तो अगर हमसे वो मिस्टेक हो भी गई है तो नहीं तो हम बता सकते भाई हमसे ये हुई, हो सकता है वो दोबारा नहीं भी आए वो प्रसंग हमारे सामने, लेकिन दूसरे किसी को आए तो हम उसको गाइड कर सकते हैं कि भाई नहीं ऐसे मेरे साथ भी हुआ था तो आप ऐसे नहीं ऐसे करो, तो उसका जो उस वो जो पीरियड है वो उसका अच्छा बन जाएगा। सेकंड है एक्सेप्टेंस। हमें जो कुछ हमारा अतीत हुआ है उसको एक्सेप्ट करना है. क्यों? क्योंकि वो चेंज होने वाला नहीं है, तो उसको एक्सेप्ट करके ही चलाना है. अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं उसको, हो गया तो हो गया. जैसे आप कांच की कोई बर्नी लेके जा रहे हैं और वो हाथ से छूट गई, छूट गई तो टूट गई. अभी टूट गई इसलिए उसके लिए अगर हम उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा बोलते रहे या हम खुद फील करते रहे, इतना बड़ा नुकसान हो गया मेरे से, इतना बड़ा नुकसान हुआ, कैसे करे, मेरे ऊपर इतना बोझ चढ़ गया, तो वो जो टूटने से जितना बोझ नहीं चढ़ा उससे ज्यादा बोझ किससे चढ़ता है? सोचने से. हम उसका सोच सोच के उतना उसका अपने को ही खुद को हैवी कर देते हैं. इसलिए जो हो गया उस अतीत को याद करने के बजाय उसको स्वीकार कर लो कि ये हो गया तो हो गया, दोबारा ऐसा नहीं होगा, इतना हम ध्यान रख सकते हैं. बार बार कोई ये अतीत जो है अपने लिए चल रहा है, दूसरों के लिए नहीं है. थर्ड पॉइंट है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड. पास्ट चीजों को ना सोचते हुए, उसका दुख ना होते हुए, ठीक है भाई हमारे साथ तो इतना सा है. जैसे मान लो कि अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया, मान लो मेरे हाथ पैर चले गए हैं, लेकिन मुझे उन चीज का धन्यवाद करना चाहिए कि मेरी आंखें, इसलिए ना करना चाहिए ना, करना तो जैसे अभी नहीं, वो एक कौन जिसको भालू ने अटैक किया था, चार भालू ने, उन लोगों को डॉक्टर लोगों ने ठीक कर दिया है ना, 8 घंटे ऑपरेशन करके. तो ठीक है, मेरे पास कुछ तो है. किसी किसी का पूरा ही जैसे ब्रेन डैमेज हो जाता है, उनको कितनी तकलीफ होती है, या किसी किसी का पूरा जब क्या जॉ चला जाता है, कुछ भी, वो कुछ भी नहीं कर सकते आगे. तो उससे अच्छा तो हम कुछ खा पी सकते हैं, देख सकते हैं, कोई सेवा करने वाला है तो और भी अच्छा है कि भाई कुछ तो हमको हेल्प मिल रही है. इसलिए जो कुछ है उसको एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए. जो कुछ है उसमें ठीक है, कम से कम समथिंग इज बेटर देन नथिंग जैसा, तो वो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रहेंगे तो अपने पास्ट से जो है वो अतीत से है, हम डिटैच रह सकते हैं. फिर नेक्स्ट है अप्लाई अप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ ड्रामा. ड्रामा का प्रॉपर मतलब यूज करना है उसको. कई लोग है ना ड्रामा का बहुत मिसयूज करते हैं. जैसे ड्रामा का यूज कब किया जाता है, जब चीज हो गई है उसके बाद फुल स्टॉप लगाने के लिए ड्रामा यूज किया जाता है. लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे मान लो ये पास्ट की बातों के लिए नहीं है, जैसे किसी ने ठीक है मुझे हेल्प किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाद में मुझे किसी की उनकी विशेषता अच्छी लगी, या मुझे किसी का आकर्षण हो रहा है, मैं बार बार उनके तरफ आकर्षित हो रही हूँ, और फिर मैं रिलेशन बढ़ाना चाहती हूँ, और बाद में वो बहुत सुंदर टाइटल देते हैं ड्रामा में, ऐसा ही है, मुझे आकर्षण ही होना है. बहुत सुनते हैं हम, इसलिए बता रहे हैं. तो ड्रामा में ऐसा ही है ना, ड्रामा मुझे वो पुल कर रहा है उनके तरफ जाने के लिए. जैसे नहीं, कई लोग बीके लोग बाद में शादी कर लेते हैं, नहीं हमारा ड्रामा में शादी करने का ही था. इसलिए ड्रामा कब यूज किया जाता है? नहीं, जब ड्रामा शादी करना है तभी बोलते, नहीं हमको शादी करना है, हमारा ड्रामा ऐसा ही है बोलते. नहीं, राइट है ड्रामा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मिस्टेक्स को अच्छा एक टाइटल दे. नहीं, जो अट्रैक्शन की बात है ना, उसके लिए तो खास बोलते हैं लोग. ड्रामा हमको पुल करता है उनकी तरफ, ड्रामा हमको खींच के ले जाता है. हम जो समझते हैं, जानते हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन ड्रामा खींचता है हमको, ऐसा बोलते लोग. फिर उनसे रिलेशन बढ़ाते. तो ये पास्ट की जो बातें, गलत बातें, वो भी ऐसी है. वो था, होने वाला था, ड्रामा का तो हो गया. नहीं हम पहले शादी कर ले, बाद में बोलेंगे नहीं ड्रामा में था इसलिए हमने शादी कर ली, दैट इज नॉट राइट ना. तो इसलिए ड्रामा का प्रॉपर अप्लाई करना है. फिर डिटैच ऑब्जर्वर. बाबा बोलता है ना, जैसे बच्चों को शादी करने की खुद की इच्छा होती है, और दूसरे फिर बाबा को बोलते बाबा घर में इतना फोर्स से शादी करे, तो बाबा बोलते तुम्हारी इच्छा है तुम जाओ. बाद में बोलता ना बाबा ड्रामा में उसकी शादी थी तो कर लिया ऐसा. फिर है बी अ डिटैच ऑब्जर्वर. जो पास्ट की घटनाएं हमें यहां तकलीफ दे रही है उसके लिए साक्षी भाव धारण करना है. वही वर्तमान के लिए भी आवश्यक है. लेकिन यहाँ बात पास्ट की चल रही है, तो इसलिए जो कुछ हुआ है उसे साक्षी होकर देखना है। तो जब साक्षी हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, तो उन बातों का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। उस बात के जो भी अच्छे बुरे जो भी प्रभाव है उससे हम न्यारे हो जाते हैं, नहीं तो उन्हीं बातों के चिंतन में हम फंसते हैं, दुखी हो जाते हैं, हेवी हो जाते हैं, टेंस हो जाते हैं, जबकि वो घटनाएं अभी है ही नहीं हमारे सामने, तो भी हम उसका चिंतन कर करके ये हो जाता खराब। फिर है क्रिएटिविटी, कुछ नहीं लाने की अपने में। कुछ अगर कोई बात हमारे साथ मतलब बहुत कोई की बातें ऐसी होती है ना, वो इतना मतलब फुल सच में अपना इतना परेशान करती है, उसी में दिमाग चला जाता है। जैसे ये नहीं हुआ ना, मुझे नहीं अच्छा लगा और ये मेरे अपोजिट हुआ है, इसी कारण मेरा बहुत इंसल्ट हुआ है, 10 लोगों के बीच में इंसल्ट हुआ, मेरा इतना नुकसान हुआ है, मेरी इमेज डाउन हो गई, रेपुटेशन चला गया, ये सब बातें इतनी घर कर जाती कि वो बार बार याद आती है। भले उसके बाद में आपको कहीं सम्मान मिल रहा है, लेकिन एक बात जहां मेरे रिस्पेक्टेबल व्यक्ति थे उनके सामने मेरी ये गति हुई या दुर्दशा हुई या ऐसा हो इंसल्ट हुआ, तो वो बात हमें कहीं कितना भी सम्मान इधर मिल रहा है लेकिन वो टिकने नहीं देती है, वो बार बार वही बातें याद दिलाती है। तो ऐसे टाइम पे अपने मन को कहीं और डाइवर्ट करने का, या हमारे कोई जो अपने जिन्हें हम कहते हैं उनके साथ जाके अपना टाइम स्पेंड करने का, जिससे कि वहां से हमारा मन डाइवर्ट हो जाए। फिर नेक्स्ट है चर्निंग ऑफ नॉलेज एंड पॉजिटिव थिंकिंग। सबसे अच्छा तरीका चर्निंग ऑफ नॉलेज, मन लगता नहीं है उसमें भी, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ करके अपने को वो जबरदस्ती उसमें डाल देने का, नहीं मुझे चर्न करना ही है। जैसे हमको यहाँ ना टॉपिक मिलता है तो हम कैसे भी करके टाइम निकाल के कुछ न कुछ करके वो टॉपिक पूरा करते हैं तो ऑटोमेटिकली और कुछ भी है तो नहीं काम पूरा करने बात वो नहीं है, ऐसे जैसे एक लक्ष्य दिया जाता है ना, लक्ष्य दिया जाता है इसलिए उसको कुछ भी करके हम करते हैं उसको। तो ऐसे ही अपने आप को, जैसे हम इस तरह की बात कोई आ रही है तो हम ही खुद अपने आप को लक्ष्य कि नहीं मुझे ये करना है, कुछ करना है, ये मुझे अव्यक्तवाणी पढ़नी है, पता है ध्यान नहीं लग रहा है तो भी जबरदस्ती पढ़नी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इतना पॉजिटिविटी का फोर्स हो जाता है तो वो अपने मन में चला जाता है, तो नेचुरली इससे हम डिटैच हो जाते हैं। और पॉजिटिव थिंकिंग करना है, जो हो गया कोई बात नहीं, जो अच्छा हुआ कि इतना वर्ष तो नहीं हुआ ना, वो हुआ तो छोड़ दो उसको। फिर नेक्स्ट है चॉइस, फील बैड और फील गुड, डोंट वेस्ट योर एनर्जी। चॉइस होती है, हो गया सो हो गया, अभी उसके ऊपर हमें किस तरह से रिएक्ट करना है, दुखी होते रहने का है या कुछ अच्छा करके अपने को अच्छा फील कराना है, ये हमारी चॉइस होती है। हम अगर दोष ही देते रहेंगे, वो ही करते रहेंगे, सोचते रहेंगे कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो हम उसको मतलब उस दुख को उस दर्द को जैसे अपने तरफ खींचते हैं, शायद ऐसा है कि हम उस दुख को एंजॉय कर रहे होते, दुखी भी हो रहे हैं और उसको चर्न कर करके शायद एंजॉयमेंट फील कर रहे हैं उसमें। तो ये हमारी चॉइस है, हमें अच्छा फील करना है या बैड फील करना है। फिर नेक्स्ट है अपनी जो मतलब अपने को जो खुश करना है ना, तो वो अपने हाथ में उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना है, वो मुझे खुश करने के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होना है, कोई दूसरा खुश करेगा तो मैं खुश हो जाऊंगी ये बात के लिए मुझे, जैसे मुझे कोई दर्द दिया है किसी ने, अगर मैं किसी को शेयर कर रही, वो अगर उसके लिए भला बुरा ना कहे तो मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा, वो भला बुरा कहता है ना, हाँ नहीं नहीं वो खराब ही है तुम्हारे साथ ऐसा किया ऐसा नहीं करेगा, तब जाके मैं अगर अच्छा फील करती हूँ तो वो ठीक नहीं है। फिर नेक्स्ट है डोंट रिपीट पास्ट मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम इट। जो भी मिस्टेक हुई है, जो भी कुछ पश्चाताप के कारण बने हैं, ब्लंडर्स की है या कुछ ऐसी बातें हैं कि जो बाद में हमें बहुत उसका पश्चाताप होता है और वो मतलब एक हैमरिंग करती है, कुछ कुछ बातें ऐसी होती है कि वो हैमर करती है हमको। मान लो कोई ऐसे किसी ने मिस्टेक कर दी कि उसकी सर्विस से उसको निकलना पड़ा, तो वो कितना हैमर करता है क्योंकि इसकी इधर जिंदगी खराब हो रही है। تو ایسے ٹائم پہ یہ یاد رکھنا کہ دوسرا کبھی دوسرا جب ہم کام کرتے ہیں یا دوسری نوکری کریں گے تب اس کا دھیان رکھے گا کہ اس طرح سے کوئی مسٹیک نہ ہو کہ میرے کو میرا وہاں سے ہاتھ دھونا پڑے گا یا وہ گنوانا پڑے گا, اس طرح سے مسٹیک نہ کرے. تو ڈونٹ ریپیٹ دا مسٹیک اینڈ لرن فرام دا پاسٹ. پھر ہے ڈونٹ شیئر نیگیٹو تھنگس. جب ہمارے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے, ہمارے ایک بہن ہے ان کے ساتھ کچھ مطلب ان کو بہت پرابلم ہوئی تھی سینٹر پہ, تو وہ جتنے بھی بار وہاں کی بات نکلتی وہ پورا سناتی کہ وہاں ایسا ہوا تھا ایسا ہوا تھا ایسا ہوا تھا, پورا وہ کنٹینیو چلتا ہے. اور ایسا نہیں ایک بار, دس بار پندرہ بار جتنے بار باہر نکلا وہ بات چلتی ہی رہتی ہے, انہوں نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا. تو وہ جو بات مطلب ہو گئی ہے وہ لوگ نہ ابھی ہے نہ وہ بہن سینٹر پہ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ابھی بھی وہ اس دکھ سے اتنی مطلب ہرٹ اتنا زیادہ ہوا ہے کہ وہ ابھی بھی اس کا ورنن کرتے, ورنن کر کے کیا ہوتا ہے پھر اس کی استھتی ڈاؤن ہو جاتی ہے, وہ بہت دکھی ہو جاتی ہے کہ دیکھو میرے ساتھ ہی ایسا ہوا, میرے ڈراما میں ایسا ہی پارٹ ہے یہ سب. تو یہ بار بار اس طرح سے نگیٹیو تھنگس جو ہوتی ہے, نگیٹیو باتیں ہوتی ہیں, وہ بار بار ریپیٹ نہیں کرنی ہے, کیونکہ وہ اس کی نگیٹیو جو وائبریشن ہے وہ ہم کو اور بھی ہیوی کرتے تھے, دکھی کر دیتے ہیں. پھر جی سننا نہیں آپ اس کو ڈائیورٹ کر سکتے نا, وہ کوئی آپ کے پاس آئے سنانے کے لیے آئے پھر اور دکھی کرنے کا اس کو. پھر اس طرح کی جو باتیں بھی ہیں وہ اپنے میموری میں یاد میں مطلب ایسے یاد نہیں رکھنی ہے ہمیشہ ہمیشہ, یہ وہی باتوں کا اگر ریپیٹیشن ہوتا ہے وہی باتیں یاد کرتے ہیں تو ہم اس سے اٹیچ ہو جاتے ہیں, اٹیچ نہیں ہو پاتے پھر دکھ ہوتا ہے ہرٹ ہو جاتے ہیں. پھر نیکسٹ ہے اسٹاپ بینگ وکٹیم اینڈ بلیمنگ ادرس. جو بھی کوئی گھٹنا ہمارے ساتھ ہوتی ہے اس کے ہم وکٹیم بلی نے بن جائے ہے نا, وہ ہمیں کیا کہیں گے وکٹیم سیلف وکٹیمائزیشن کی بات نہیں ہے, وہ پیڑتی ضروری نہیں کہ سیلف وکٹیمائزیشن اس لیے نہیں بول رہے کہ ضروری نہیں کہ ہماری مسٹیک ہے, دوسروں کے ہین بھاونا اپروپریٹ نہیں, دکھ ہو جاتا نا چل جو بھی, تو اپنے آپ کو اس کا مطلب اس کی اتنا وکٹیم نہیں بن جائے کہ ہم کو یہ پرابلم, تو اسی میں ہم دکھی ہوتے رہے اور اس کے کارن ہی ایسا ہوا, یہ ویکتی نہیں ہوتا یہ اس سمے یہ نہیں کرتا تو میرا ایسا نہیں ہوتا تھا, ابھی میرے لائف میں اتنی پرابلمس آ رہی ہیں وہ کیول اس ویکتی میں. تو دوسروں کو دوش اگر ہم دیتے رہیں گے تو ہم اپنے میں سدھار لانے کا کوئی مطلب پھر پریاس نہیں کریں گے, ہم سوچیں گے نہیں کہ ہمارے میں کوئی ہم کچھ اس میں سدھار کر سکتے ہیں یا کچھ امید ہے اس میں, وہ سوچ ہی نہیں سکتے. اس لیے دوسروں کو دوش بھی نہیں دینا ہے جس کے لیے اور ایک جسے لیے اور کہہ سکتے کہ نردوش درشٹی, کیوں ڈراما کا جو نالج ہے اس میں کہتے نردوش درشٹی, اگر پراپر نالج ہے اس کا تو دوسروں کے لیے ہم بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں پتا ہے یہ ہمارے ہی کارمک اکاؤنٹ ہے, ابھی اتنے جنموں سے ہم اتنے آتماؤں کے سمپرک میں آ رہے ہیں, کس کس کے ساتھ ہم نے کیا 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 ہے ہمیں نہیں پتا ہے, اور اس کا وہ پتا نہیں وہ ویکتی کون سے جنم سے ہمارا انتظار کر رہا ہے ہمیں بدلہ لینے کے لیے, تو وہ کہ کب یہ ملے اور وہ کب, اور جیسے وہ ہوتا ہے نا کمپاؤنڈ انٹرسٹ, تو وہ جو حساب کتاب لینے والا ہے نا وہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ سے آپ کا حساب کتاب لیتے ہیں, یہ نہیں کہ آپ نے ایک بولا ہے اس کو تو ایک ہی بولے گا, وہ تو جب تک جتنے جنم تک انتظار کرے گا اتنا اس کا وہ انٹرسٹ بڑھتا جائے گا اور پھر وہ انٹرسٹ سہیت لے گا آپ سے. وہ جیسے بینک میں نہیں جمع کرتے ہیں پانچ سال کی ہے پھر ایل آئی سی میں کتنا پچیس سال کا بیس سال کا پچیس سال کا ہوتا ہے, تو اتنا وہ ریٹ آف انٹرسٹ بھی بڑھتا جاتا ہے نا, اس کو ایٹیٹیوڈ آف ایٹیٹیوڈ رکھنا پڑے گا. پھر ہے فوکس آن پریزنٹ, تو جو ورتمان سمے ہے اس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا ہے, اگر پاسٹ کی ہی باتوں میں ہم لگے رہیں گے اس میں ہی بزی رہیں گے دکھی ہوتے رہیں گے تو جو ہمارا کچھ ورتمان اچھا ہے یا اس میں اچھا کچھ کر سکتے ہیں وہ ہم نہیں کر پائیں گے. اس لیے جو ورتمان کا سمے جو بھی کاریہ ہمارے پاس ہے جو بھی ریلیشن ہمارے ساتھ ہے جو بھی کچھ ہے اس کے ساتھ उनके ऊपर फोकस करना है और उसको अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करना है। जैसे वो कहते हैं ना, बच्चे को एक खिलौना अगर छोड़ना है तो उसको दूसरा खिलौना दे देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली छूट जाता है। तो ऐसे हमें अपने वर्तमान के ऊपर इतना ध्यान केंद्रित करना है कि वो अपने आप पीछे वाला जो है वो भूलता जाए। फिर है फॉरगिव अदर्स, दूसरों को क्षमा करना। बाबा अक्सर हमें कहता है कि दूसरों को क्षमा करो, दूसरों के ऊपर रहम करो। हमें पता है उन लोगों ने हमारे साथ बहुत गलत किया है, किसी ने भी किया है वो हमें बहुत परेशान, ऐसा हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई ऐसे प्रसंग होते ही है कि किसी ने उनके साथ बहुत कुछ गलत किया, क्योंकि हम आए हैं यहाँ कार्मिक अकाउंट सेटल करने के लिए, तो ये सब होता ही है। तो उन आत्माओं के लिए एक हमारी घृणा की दृष्टि या हेट या गुस्सा उनके लिए इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो व्यक्ति हम कभी भी नहीं चाहते, किसी को तो देखना भी नहीं चाहते कि शक्ल भी नहीं सामने दिखाई दे इन लोगों की। लेकिन उनका कहीं भी नाम निकलता है तो एकदम से वो पूरी जो हमारी उनके प्रति जो भावनाएं हैं, अवधारणाएं हैं, सब कुछ वो जागृत हो जाता है। तो ऐसी आत्माओं के लिए हमें रोज उनको माफ कर देना है, क्योंकि नहीं माफ करेंगे तो हमारे वो अकाउंट और भी बढ़ते जाएंगे और नए क्रिएट होते जाएंगे। इसलिए उन लोगों को, उन आत्माओं को माफ कर देने से हमारे जो उनके साथ के अकाउंट है वो सेटल हो जाएंगे और हम उनको भूल जाएंगे, फिर दोबारा वो फिर आएंगे भी नहीं हमारे पास। फिर नेक्स्ट है दुआएं देना। क्यों दुआएं देना है उनको? जैसे अभी कहा ना कि उन्होंने हमारे कार्मिक अकाउंट सेटल किए हैं, है ना, हमारे लिए रास्ता वो खुला कर रहे हैं हमारे आगे बढ़ने का, इसलिए उनको दुआएं देनी है। दुआएं देंगे तो ऑटोमेटिकली दुआएं मिलेगी और हमारे अकाउंट फिर जो भी है आगे के भी थोड़े वो डिले हो जाएंगे या कट जाएंगे जो भी है। फिर है अपने जीवन के लिए नए लक्ष्य की नए लक्ष्य बनाना, न्यू एम्स, अपने लिए कोई नया लक्ष्य निर्धारित करना कि जिससे कि ये सब बातों का प्रभाव उसके ऊपर नहीं आएंगे। फिर है पास्ट इज पास्ट, बाबा ने जो ड्रामा का हमें ज्ञान दिया है ये फुल स्टॉप लगाओ। बहुत सारी अव्यक्त मुदलियां भी इस पर चली है कि बीती सो बिंदी, तीन बिंदियों में भी एक बिंदी आती है कि बीती सो बिंदी, पास्ट हो गया ना, फिर कब रिपीट होगा, 5000 साल के बाद रिपीट होगा, इसलिए अभी हमें उसके बारे में सोचना नहीं है। लेकिन ये ड्रामा का नॉलेज है ना, अप्रोप्रिएट रीति से यूज करना बहुत मैं थोड़ा कठिन ही जाता है, क्योंकि यही बात अगर और भी आता ना यही फिर दोबारा रिपीट होगा, जबकि हमें उस टाइम याद नहीं होगा लेकिन अभी हम दुखी हो जाते हैं कि यही सब रिपीट होने वाला है। तो जरूरत नहीं है दुखी होने की, क्योंकि जब नए जब होगा तब हमारे लिए वो नई बात होगी। इसलिए पास्ट इज पास्ट फुल स्टॉप लगाने का। फिर शेयर आवर सफरिंग्स विथ हुम वी हैव फेथ, ये कभी कभी शेयर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नेगेटिविटी फैलाने, बहुत जगह जाते हैं हम लोग शेयर करने के लिए तो वो नेगेटिविटी होती है, लेकिन अगर हम समझते हैं कि इसका हमें बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा है, बोझ हो रहा है, तो हम जिनको हमारे जिनके लिए हमारे बहुत रिस्पेक्ट है या हमें पता है कि ये बात बाहर नहीं जाएगी या ये हमारी बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो उनके साथ हम अगर इस तरह की बात हम शेयर करते हैं तो भी हम हल्का महसूस करते हैं, उससे अलग हो जाते हैं। कभी कभी हम कहते हैं ना, चलो आपसे बात कर लिया ना, अभी मैं हल्की हो गई, मुझे अभी कुछ ठीक है, उसका टेंशन चला गया, क्योंकि वो हमें सॉल्यूशन भी देता है या समझ लेता है, समझा देता है हमें, तो हम उस बात से हल्के हो जाते हैं, इसलिए कभी कभी शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसा स्टे अवे फ्रॉम ट्रिगर्स विच मेक्स अस डिस्टर्ब, कि इस तरह के कोई पर्सन है, प्लेसेस है या कोई ऐसी बातें है, किसी का कोई म्यूजिक कैसा कुछ होता है या कोई ऐसी सुगंध भी होती है जो हमें उस बात उस टाइम जो उस कारण कुछ ऐसा हुआ है तो वो हमें अभी याद दिल आती है या ऐसा मिल जाता है कुछ, तो हमारे वो ट्रिगर बन जाता है वो दुख की फीलिंग आने के लिए या फील करने के लिए वो सब बातें। तो इस प्रकार की जो भी बातें हैं उनसे दूर रहने का। कभी स्थान चेंज कर सकते तो स्थान, व्यक्ति अगर चेंज हो सकता है या किनारा कर सकते तो किनारा कर ले, लेकिन कुछ भी नहीं होता है तो फिर एक्सेप्ट करना होता है। फिर लास्ट में है टेक हेल्प ऑफ प्रोफेशनल, अगर ये सब बातें अगर हमें कुछ भी नहीं अप्लाई हो रही इतने सारे पॉइंट, तो किसी जो प्रोफेशनल काउंसलर्स होते हैं तो काउंसलर होते हैं, काउंसिल करते हैं हमें, काउंसलिंग करते हैं, तो उनकी मदद लेके फिर हम अपने पास से डिटैच हो सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये अपने अतीत से हम डिटैच कैसे रहे, जैसे न्यारे कैसे रहे। ओम शांति।
मत बिसरो, मत बिसरो।